Jaya Gopi Jana Vallabha Givardhani.
Jaya Gopi Jana Vallabha Givardhani.
Jaya Gopi Jana Vallabha Givardhani.
Yashodana Braja Janaranjana.
Yashodanandana Braja Janaranjana.
Yashodanandana Braja Janaranjana.
Yashodanandana Braja Janaranjana.
Yamuna Tira Vanachari.
Yamuna Tira
श्री नित्याय गौर हरि की, श्री गोकुल धाम की। निताय गौर प्रेमान समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग
हरे कृष्णा
हरि बोल
हरे कृष्णा। आप लोग इतने सुखी क्यों लग रहे हैं? तो वर्णाश्रम के बारे में क्या चर्चा चल रही है, किस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे? वर्णाश्रम के ऊपर कोई खास विषय के ऊपर चर्चा हो रहा है या अच्छा वर्णाश्रम के ऊपर?
और हम लोग अभी हमारा क्लास में चल रहा है,
तो ये श्लोक को लेना है। तो आज ये श्लोक लें,
इवनिंग क्लास में चल रहा है,
इवनिंग क्लास में
वर्णाश्रम के इसमें तात्पर्य
तो ये श्लोक को पढ़े अभी।
हाँ।
श्लोक पढ़ के अनुवाद तात्पर्य पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य,
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं,
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं,
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये,
नश्चप्रायेषु भद्रेषु
नश्चप्रायेषु भद्रेषु,
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया,
भगवते उत्तम श्लोके
भगवते उत्तम श्लोके,
भक्तिर्भवति नैष्ठिके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय, ऋषियों द्वारा प्रश्न, श्लोक संख्या 11। भूरिणी भूरिणी भूरिणी
भूरिणी
भूरी
भूरी,
कर्माणि
कर्माणि
श्रोतव्यानि
श्रोतव्यानि,
विभागशः
विभागशः,
अतः
अतः
साधो
साधो,
अत्र
अत्र
य सारं
सारं,
समुद्धृत्य
समुद्धृत्य,
मनीषया
मनीषया,
ब्रूहि
ब्रूहि,
भद्राय
भद्राय,
भूतानां
भूतानां,
येन
येन
आत्मा
आत्मा
सुप्रसीदति
सुप्रसीदति।
भूरीणि भूरि कर्माणि
भूरीणि भूरि कर्माणि,
श्रोतव्यानि विभागशः
श्रोतव्यानि विभागशः,
अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया
समुद्धृत्य मनीषया,
ब्रूहि भद्राय भूतानां
ब्रूहि भद्राय भूतानां,
येनात्मा सुप्रसीदति
येनात्मा सुप्रसीदति।
भूरीणि भूरि कर्माणि
भूरीणि भूरि कर्माणि,
श्रोतव्यानि विभागशः
श्रोतव्यानि विभागशः,
अतः साधोत्र यत्सारम्
अतः साधोत्र यत्सारम्,
समुद्धृत्यं मनीषया
समुद्धृत्यं मनीषया,
ब्रूहि भद्राय भूतानां
ब्रूहि भद्राय भूतानां,
येनात्मा सुप्रसीदति
येनात्मा सुप्रसीदति।
हिंदी में भूरीणी
भूरीणी
बहुमुखी
बहुमुखी
भूरी
भूरी
अनेक
अनेक
कर्माणि
कर्माणि
कर्म
कर्म
कर्तव्य
कर्तव्य
श्रोतव्यानी
श्रोतव्यानी
सीखने योग्य
सीखने योग्य
विभागवशः
विभागवशः
विभागवशः है यहाँ विभागवशः लिखा है थोड़ा गलती है इसमें ट्रांसलेशन पेन है विभागवशः होना चाहिए विभागवशः कर दिए विभागशः
विभागशः
विषयानुसार
विषयानुसार
अतः
अतएव अतएव
साधो
साधो
हे साधो
हे साधो
पत्र
पत्र
यहाँ
पर
यत
यत
जो कुछ सारम
सारम
निष्कर्ष
निष्कर्ष
समुद्धृत्य
समुद्धृत्य
चुनाव करके मनीषया
मनीषया
अपने ज्ञान के अनुसार
अपने ज्ञान के अनुसार
सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ
ब्रूही
ब्रूही
कृपा करके बताएं
कृपा करके बताएं
भद्राय
भद्राय
कल्याण के लिए
कल्याण के लिए
भूतानाम
भूतानाम
जीवों के
येन
येन जिससे
जिससे
आत्मा
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 सुप्रसिद्धति
सुप्रसिद्धति
पूर्णतया प्रसन्न हो जाती है
पूर्णतया प्रसन्न हो जाती है।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं जिससे उस उपदेश में उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तात्पर्य आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है अतः यह कितने भी भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के लिए हैं। विभिन्न कालों तथा स्थानों में विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए उनके प्रकार के उपायों अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप शास्त्रों की संख्या असंख्य है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति के इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर पर उठने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। नहीं सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा, उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानांजनशलाकया श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वनरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेयं सावधूतं परिघनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामे
नमस्ते सारस्वते गौरवाणी
प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो यही विषय है कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म को पूरी तरह से नहीं संभाला जाता, यही है ना विषय जिसके ऊपर चर्चा चाहिए। तो फिर से पढ़ें वो भाग, वो जो किताब उसी भाग को फिर से पढ़ते हैं तात्पर्य। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति के इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मुनियों को मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। नहीं सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा, उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। वैसे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में दो चीजें बताई हैं इस संबंध में। एक कि मेरे आंदोलन का 50% अभी तक रह गया है, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करनी है, और इस इच्छा के अनुसार उन्होंने बहुत कुछ कहा है अपने तात्पर्यों में, अपने प्रवचनों में, अपने जो व्यक्तिगत संवाद किए उन्होंने भक्तों के साथ उनमें। तो ये स्पष्ट है कि प्रभुपाद जी ऐसे वर्णाश्रम धर्म की स्थापना चाहते थे जिसमें कि हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार भगवान की सेवा में रत रहे। कई बार वो ऐसा भी कहते थे कि आजकल क्योंकि समाज में कोई वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये समाज इतना पतित हो गया है, और उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा सबसे उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है कि मैं ब्राह्मणों को तैयार करूं। जैसे ब्राह्मण तैयार हो जाएंगे फिर वो सारे समाज को मार्गदर्शन कर सकेंगे, फिर उनके मार्गदर्शन में क्षत्रिय तैयार हो सकते हैं। जब अच्छे क्षत्रिय तैयार हो जाएंगे तो वो ऐसा सुरक्षित वातावरण निर्माण करेंगे जिसमें वैश्य आदि अपने व्यवसाय कृषि आदि को अच्छी तरह से कर पाएंगे निर्भय होकर, और ऐसे सुरक्षित वातावरण में वो कर भी खुले हृदय से राजा को देंगे, क्षत्रियों को देंगे। और ऐसे जब वैश्य और क्षत्रिय भी ठीक रहे तो शूद्र भी उनकी सेवा करने में प्रसन्न रहेंगे, उनका शोषण नहीं होगा, और जब शोषण नहीं होगा तो वो उपद्रव नहीं मचाएंगे। जब उनका देखभाल ठीक से किया जाएगा क्षत्रिय वैश्यों द्वारा तो उपद्रव न मचाकर वो बड़ी अच्छी सेवा भावना से ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करते रहेंगे। लेकिन सर्वप्रथम प्रभुपाद ने कहा मुझे ब्राह्मणों को तैयार करना है, क्योंकि ब्राह्मण समस्त समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्ण माने जाते हैं। अन्य तीन वर्णों में भी कुछ बिगड़ जाए तो हानि तो होती है समाज को, परंतु ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो जाए तो सारे समाज का पतन और विनाश निश्चित है। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत ब्राह्मणों के पतन से हुई। काल की बात है तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण स्वधाम चले गए उस समय से कलयुग की शुरुआत हुई, परंतु कौन से कार्य से शुरू हुई ऐसे बताया जाता है कि जब श्रृंगी जो शमेक ऋषि के पुत्र थे उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। ऐसे श्राप देना उचित और योग्य नहीं था उस बालक के लिए, लेकिन फिर भी उसने दिया, तो उस समय से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया और कलयुग की शुरुआत हो गई। तो कली का प्रवेश और कली का प्रभाव ब्राह्मणों के पतन से आरंभ हुआ, और जैसे जैसे ब्राह्मण पतित होते गए वैसे वैसे कलयुग का प्रभाव भी बढ़ता गया, और जैसे ब्राह्मणों का पतन हुआ तो वैसे वैसे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, सबका पतन होने लगा, और ऐसे वर्णाश्रम पद्धति प्राय लुप्त हो गई पृथ्वी में। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि पुनः ब्राह्मणों को तैयार करके फिर विशेष करके ऐसे स्वावलंबी समाज जैसे गोकुल धाम, इसमें वर्णाश्रम धर्म की वो स्थापना करें, जहां कृष्ण भक्त हमारी संस्था के मिलकर एक ऐसा आदर्श समाज बनाए जो कि सारी दुनिया के लिए एक अनुसरणीय समाज बन जाएगा। लोग आके यहाँ पर देखेंगे कि हाँ ऐसे जीना चाहिए, सरल जीवन, ऊंचे विचार। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। दूसरी ओर प्रभुपाद जी ने अनेक जगह ये भी कहा है, जैसे कि यहाँ इस तात्पर्य में भी है, कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना पूरी तरह से नहीं की जा सकती, शत प्रतिशत नहीं होती, नहीं हो सकता है, ये तात्पर्य है। तात्पर्य ये नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन बिल्कुल नहीं हो सकता, या थोड़ा बहुत भी पालन करने का की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तात्पर्य ये है कि वर्णाश्रम धर्म की जो शास्त्र हैं वो अनेक हैं, और उनमें जो अनेक वर्णों के लिए और आश्रमों के लिए जो नियम बताए गए हैं वो भी अनेक हैं। उनकी पालन करना तो दूर की बात है, केवल इनको जानना और इनको समझना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतने सारे अलग अलग शास्त्रों में बात फैली हुई है, और आज के समय में ये संस्कृति इतनी नष्ट हो गई है कि प्राय इन चीजों को कोई जानता भी नहीं है, और जब जानता नहीं है तो पालन की बात तो दूर है, और यदि कोई व्यक्ति जानते भी हैं और पालन करना भी चाहते हैं तो अपने छोटे से समाज में थोड़े हद तक कर सकते हैं, परंतु वातावरण इतना बिगड़ गया है कि सारे वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना पूरी तरह से ये संभव नहीं है। जैसे मनुस्मृति, मनुसंहिता आदि में और अन्य धर्मशास्त्रों में अनेक सारे कड़े नियम बताए गए हैं जो कि आजकल के लोगों के लिए संभव नहीं है। साधारण चीज है कि उस समय में साधारण व्यक्ति भी निर्जल एकादशी हर एकादशी को करता था निर्जल। आजकल साल में एक बार हम करते हैं तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन वहां हर साधारण व्यक्ति करता था। वहां के द्वापर आदि युगों में, द्वापर त्रेता सत्य में ऐसे वातावरण था, लोगों की बुद्धि, लोगों का मन, लोगों की इंद्रियां, लोगों के शरीर, लोगों की वृत्ति, लोगों का स्वभाव, उनके गुण श्रेष्ठ हुआ करते थे कली के हिसाब से। इसलिए वो नियमों का पालन कर सकते थे, वो श्रद्धा रखते थे। आजकल के लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, संशय आत्मा है। तो थोड़े लोग भले पालन करेंगे लेकिन पूर्ण समाज में इसका पालन करना भी बहुत मुश्किल है पूरी तरह से। और कली के प्रभाव से हर चीज का गठन इतना हो गया है, बुद्धि का, मन का, शरीर का, वातावरण का, कि इन चीजों को शत प्रतिशत संभालना या पालन करना ये संभव बिल्कुल नहीं है पूरी तरह से करना। परंतु प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जहां तक हो सके हम वर्णाश्रम धर्म की पालन करें और उन नियमों का पालन करें जो हमारे लिए संभव है, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा उद्देश्य है कि हम श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बने। तो इसको दैव वर्णाश्रम कहते हैं। दैव वर्णाश्रम में उद्देश्य स्पष्ट है, उद्देश्य है कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। तो हमारे वर्णों और आश्रमों के नियमों के परिपूर्णता से पालन करने का उद्देश्य है कि भगवान श्री हरि या श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो भक्त का उद्देश्य एक ही होता है कि कैसे भगवान को हम प्रसन्न करें। तो वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करने का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की प्राप्ति करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो यहाँ कलयुग में जब हर चीज का घटन हो गया है, वर्णाश्रम संस्कृति प्राय विनष्ट हो चुकी है, तो ऐसे अवस्था में यद्यपि हम पूरी तरह से वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, कम से कम हम उद्देश्य की प्राप्ति तो सीधे साधन भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या था? धीरे धीरे से आदमी को नियमित करके उनको धीरे धीरे से उठाना। जो व्यक्ति पशु समान है, जिनके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई संस्कृति सभ्यता नहीं है, ऐसे समाज को, ऐसे पशुतुल्य लोगों को एक सभ्य मानवीय जीवन के स्तर में उठा के ले आना, ये वर्णाश्रम धर्म की पद्धति है। और ऐसे वर्णाश्रम धर्म में आके अनेक जन्मों से धीरे 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 जब भक्तों का संग करता तो फिर वो कृष्ण भक्ति के स्तर तक पहुंच सकता है। वैसे वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी ऐसे कई नियम होते हैं जो भगवान की सेवा के संबंध में होते हैं, परंतु उनका करने का उद्देश्य सीधे सीधे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना नहीं होता है। यह वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार ही चलता है, परंतु साधन भक्ति जो करते हैं, विशेष करके कलयुग में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है, तो ऐसे अवस्था में हम साधन भक्ति करके सीधे कृष्ण प्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठाया जा सकता है कि फिर वर्णाश्रम धर्म क्यों चाहिए हमें, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म एक ऐसे बुनियाद है, एक ऐसे आधार है जिसपे भक्ति की इमारत, भक्ति का जो भवन है वो बन सकता है। क्योंकि भक्ति करने के लिए भी कोई संस्कृति चाहिए, कोई सभ्यता चाहिए। जैसे यदि इसलिए प्रभुपाद जी ने चार नियमों को के ऊपर इतना जोर दिया, हमारे जीवन का उद्देश्य चार नियमों का पालन करना नहीं है। क्या गोलोक वृंदावन में कोई बड़ी बात है चार नियमों का पालन करना, कोई इसका बड़ा विषय होता है गोलोक वृंदावन में? कोई सवाल ही नहीं है, ये तो विषय ही नहीं है गोलोक वृंदावन में। तो वहां तो ऐसे इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन यहाँ ये बड़ा विषय है। क्योंकि कलयुग का वातावरण इतना पापी वातावरण है जिसमें कि ये चार निषिद्ध कार्य बहुत सामान्य माने गए हैं और हरेक व्यक्ति प्राय इनको करता है, और उसे दूर रहना कितना मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इन चार कार्यों के ऊपर निषेध लगाया और इतना जोर दिया इसमें, क्योंकि जब तक हम ये चार पाप के कार्य कर रहे हैं तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति करने के लिए कम से कम एक सात्विक वातावरण की आवश्यकता है, एक सात्विक सभ्यता और संस्कृति की आवश्यकता है। तो इसलिए हम अपने भक्ति को आगे बढ़ाए रखने के लिए एक ऐसा अनुकूल और उचित वातावरण बनाए रखना चाहते हैं जिसमें हमारे भक्ति के नियमों का पालन अच्छी तरह से हो सके। हम जप कर सकें, हम हमारी कीर्तन कर सकें, अध्ययन पढ़ाई आदि कर सकें, भगवान की सेवा तरह तरह से कर सकें। जिस जगह में चार नियमों को तोड़ा जाता है और भोग का उद्देश्य प्रधान रहता है, ऐसे स्थान में कृष्ण भक्ति करने के लिए आदमी को इच्छा नहीं होगी, प्रेरणा नहीं मिलेगी, और यदि कोई चाहता भी है तो उसका उत्साह जो है बहुत शीघ्र ही मिट जाएगा। जैसे एक अग्नि के जो भी अभी जल रहा है, ज़्यादा प्रज्वलित नहीं है, जल रहा है, उसके ऊपर पानी डालते रहें तो बुझ जाएगा। इसलिए कृष्ण भक्ति को करने के लिए वर्णाश्रम धर्म के थोड़े बहुत नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म और कृष्ण भक्ति इनका संबंध क्या है। वो कहते हैं कि हमें वर्णाश्रम धर्म के उन नियमों को स्वीकार करना चाहिए जो कि हमारे भक्ति के लिए लाभदायक है, और उन वर्णाश्रम धर्म के नियमों को त्यागना चाहिए जो हमें कर्मकांड या ज्ञानकांड की ओर ले जाते हैं, जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं। जैसे वर्णाश्रम धर्म में ऐसे कई नियम हैं जो देवी देवताओं की उपासना से संबंधित हैं। एक उदाहरण देते हैं, एक श्लोक है 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत का, देवर्षि भूतातृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मनायः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। नव योगेंद्र महाराज मिनी को बताते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है इस भौतिक जगत में, उसके सीधे सीधे छह प्रकार के ऋण हो जाते हैं। एक है देवताओं के प्रति ऋण, देवलोक देवता जो है हमें इस प्रकृति में जो भी कुछ है वो प्रदान करते हैं भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए। जैसे सूरज की रोशनी है, उष्णता है, हवा है, पानी है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रकृति में हमें जीने के लिए आवश्यक हैं, वो देवता प्रदान करते हैं। तो देवताओं के प्रति हमारा ऋण है, क्योंकि इन प्राकृतिक चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते थे, हम जी नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा एक ऋण है उनके प्रति। और वो ऋण को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्मकांड के पद्धति के अनुसार चुकाया जाता है, उपासना कांड में या कर्म कांड में तरह तरह के उपासना करके यज्ञ होम आदि करके, देवताओं की पूजा अलग से करके, उनके लिए कोई तप आदि करके, तो देवताओं के प्रति जो ऋण है ये चुकाया जाता है। फिर ऋषि, इतिहास में जितने ऋषि हुए हैं उन्होंने अपने तप के द्वारा, अपने ज्ञान अर्जन के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा ऐसे सारे समाज का भला किया है। इतना पाप चल रहा है समाज में कि केवल ऋषियों की तपस्या के लिए ये अभी तक चल रहा है सब कुछ, नहीं तो कब का नष्ट हो गया होता। तो ऋषिगण हमें ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, व्यासदेव आदि ने इनकी रचना की है, फिर उनके शिष्यों के द्वारा उन्होंने परंपरा में इसका प्रचार प्रसार किया है और ये ज्ञान हम तक पहुंचा है, जिससे हम आध्यात्मिक जगत का और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बहुत ऋणी हैं इन ऋषियों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन का उद्देश्य क्या है यह समझाया है। तो ऋषियों के प्रति जो ऋण होता है वो हम चुकाते हैं शास्त्रों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का श्रवण आदि करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से। फिर तीसरी है भूत, भूत अर्थात प्राणी। हम यहाँ भी देख रहे हैं, खास करके जो कृषि आदि करते हैं, कि हम किस हद तक अन्य प्राणियों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। बैल हमारे लिए कितना काम करती है, हमारे लिए रथ गाड़ियां आदि खींच के ले जाती है, हल चलाती है हमारे लिए, बहुत सारे काम बैल करती है, धानी चलाती है, चलाते हैं। दूसरी ओर गाय, गाय भी हमारी माता है, गाय से हमें बहुत कुछ लाभ मिलता है, गाय बैल से भी दूध, और गाय से दूध मिलता है, गाय बैल से मूत्र और गोबर मिलता है, जिससे बहुत लाभ मिलता है। और केवल गाय बैल की बात नहीं है, अभी खेती करते समय मिट्टी में इतने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो पौधे को बड़े होने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, यदि वो नहीं हो तो पौधा ठीक से बड़ा होगा नहीं। उसी तरह से पक्षी हैं, उनका भी बहुत महत्व है, कितने सारे पेड़ हैं, वो भी ऑक्सीजन निकालते हैं, हम सांस लेते हैं अंदर से। ऐसे देखा जाए तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हम पूरी तरह से अन्य प्राणियों के ऊपर, भले वो पेड़ हों, कीटाणु हों, कीड़े हों, पक्षी हों, पशु हों, उनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं। तो उनके प्रति जो हमारा ऋण है वो हमें चुकाना चाहिए उनकी रक्षा करने से, उनकी हत्या नहीं करके, और थोड़ा बहुत उनको भोजन आदि खिला के। जैसे ऐसे बताया जाता था कि कुत्ता जो होता है उसको कभी घर में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छ नहीं होता है पशु। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये कुत्ता ऐसा पशु है जो तुलसी महारानी के ऊपर भी मूत्र कर देता है, इसलिए ये बहुत स्वच्छ नहीं है, इसको नहीं रखना चाहिए, पापी है ये, परंतु रक्षा करता है। तो धर्मशास्त्र में बताया गया है कि बाहर खेत में भले हम कुत्ते को खिलाएं, भोजन दे देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे पशुओं को खिला के, उनको नहीं मार के, उनकी सेवा की जा सकती है, उनके प्रति जो ऋण है वो चुकाया जा सकता है। जो पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमें अभी तक याद है, हमारे बचपन में हमारे घर में खिड़की के ऊपर हमारी माँ भोजन रखती थी कौओं के लिए, और जो चिड़िया और कौवे आते थे उनके लिए भोजन रखा करते, नियम था। शहर में रहते हुए, ऊपर बड़े बिल्डिंग में रहते हुए, पहले ऐसे प्रथा थी, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पशुओं के लिए रख लेना, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। इसका सिद्धांत है कि जो भी हम पकाते हैं, जो भी हम उगाते हैं, जो भी कुछ प्रकृति में है वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। हमारे छोटे भाई बहन हैं जो अन्य योनियां हैं, उनका भी थोड़ा बहुत अधिकार जमता है, परंतु अधिकार से ज्यादा वो खाएंगे तो मनुष्य को नुकसान पहुंचता है, इसलिए मनुष्य उनको थोड़ा बहुत रक्षा करना भी पड़ता है। परंतु सिद्धांत है कि उनकी उनके लिए भी कुछ हमें देखभाल करना चाहिए। ऐसे उनके प्रति जो हमारा ऋण है वो हम चुकाते हैं। आप्त, आप्त मतलब हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्य। तो ये सब हमें उन्होंने बड़ा किया, उनके साथ में हम बड़े हुए हैं। हालांकि ब्रह्मचारी होने के लिए सबसे बड़ा विरोध उन्हीं से आता है, फिर भी साधारण जीवन में देखा जाता है तो एक परिवार के सदस्यों के ऊपर सब लोग निर्भर रहते हैं, सारे सामाजिक और धार्मिक कार्य उनके साथ करते हैं, संकट के काल में रिश्तेदारी मदद करने आते हैं, तो उनके प्रति भी ऋण होता है और वो भी उनकी सेवा करके चुकाया जाता है। और फिर पितृ, नृणाम, नृणाम, नृणाम मतलब जो मनुष्य है, नृ मनुष्य समाज, और समस्त मनुष्य मनुष्य समाज के प्रति भी हम निर्भर हैं, क्योंकि हम अकेले तो नहीं रह सकते समाज में, नहीं केवल एक परिवार अकेला रह सकता है, सारे समाज में कितने लोग हैं जो कितने चीज करते हैं। यदि हम खेती कर रहे हैं तो कोई कपड़ा बना रहा है, तो कोई तेल निकाल रहा है, तो कोई गाय से दूध दे रहा है, तो कोई लोहार का काम करता है, कोई राजा है जो सबकी रक्षा करता है, तो ऐसे हर एक व्यक्ति अलग अलग काम करता है और हमें अनेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम अन्यों से लेते हैं, हम खरीदते हैं, या कोई हम उनको कुछ चीज देते हैं, वो हमें उस चीज को देते हैं। तो हमारे जीविका के लिए हम अन्यों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। साथ साथ में पितृणाम, हमारे जो पितृ हैं उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए। हाँ, मनुष्य समाज के प्रति जो हमारा ऋण है वो चुकाया जाता है अतिथि सेवा करके। अतिथि मतलब वो जो तिथि बिना आता है, बिना बताए जो अचानक चले आता है हमारे द्वार के ऊपर, उसको अतिथि कहते हैं। मेहमान, जो मेहमान होता है, जो बिन बुलाए आता है या बुलाए भी, तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसको थोड़े मीठे शब्द बोलने चाहिए, कम से कम बैठने के लिए अच्छा आसन देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, हो सके थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। ऐसे अतिथि सेवा करके मनुष्यों के प्रति जो ऋण है वो चुकाया जा सकता है। पितरों के प्रति हमारा ऋण इसलिए है कि उनके कारण हमारा शरीर प्राप्त हुआ है। वो नहीं होते तो हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होता, हमारा जन्म नहीं होता। तो पितरों के प्रति ऋण चुकाया जाता है श्राद्ध आदि करके, जिसमें पिंड तर्पण आदि दिया जाता है, हर साल किया जाता है, और जब देहांत होता है किसी पितृ का उस समय भी किया जाता है। अनेक विधियां इसमें होती हैं, बहुत लंबे चौड़े चीजें होती हैं। तो ये छह प्रकार के ऋण होते हैं, ऐसे नव योगेंद्र बताते हैं। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम सब जन्म से ऋणानुबंध होते हैं, ऋण से बंधे हुए होते हैं। ऋण का बंधन है, छह प्रकार के ऋणों का बंधन होता है, और इस बंधन के कारण कर्म बंधन होता है, क्योंकि इन ऋणों को चुकाने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और चुकाते चुकाते हम अन्य कर्म भी करते हैं साथ साथ, उनसे और कर्मों के फल मिलते हैं और फिर पुनर्जन्म होता है। ऐसे ही ऋणानुबंध के कारण कर्म बंधन हो जाता है, कर्म बंधन से जन्म मृत्यु का बंधन हो जाता है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म में बताया जाता है कि हमें कैसे इन चीजों से मुक्त होने के लिए, ऋण चुकाने के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए। साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी कितने सारे पाप हम करते हैं। प्रभुपाद जी अलग अलग जगह बताते हैं कि पंच सूना पाप, तरह के पाप, पांच तरह के पाप होते हैं जो हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, रोज करते हैं। जैसे एक है झाड़ू मारते समय कितने कीड़े मर रहे होंगे, कीटाणु मर रहे होंगे उसमें। दूसरा है हम कोई एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गर्म पानी या कुछ हम डाल रहे हैं, या कुछ हम दाल बनाए हैं दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं। और तीसरा क्या है, दिया जला रहे हैं, आग आग जलाते समय भी हो सकता है। और कौन से हैं, दो तीन आग लगाते समय और पंच शून्य में और है ऐसे दो तीन जो दैनिक कार्य में हमारे रहते हैं ना रगड़ा हाँ हम जब चक्की वगैरह चलाते हैं उस समय तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों में भी हमारे कितने पाप हो जाते हैं इनके लिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें बहुत सारे विधियों का पालन करना पड़ता है बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं तो इस समय में यदि हमें सारे ऋण चुकाने हैं और उन सब चीजों को आजकल के जमाने में करना है तो बहुत मुश्किल है इसलिए क्या होता था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते भी कृष्ण भक्ति का उद्देश्य जो है वो कहीं पीछे रह जाता था क्योंकि आदमी इतना व्यस्त हो जाता था इन सब चीजों को करते करते कि भूल जाता था कि भाई इसके पीछे क्या उद्देश्य है पुराना हाँ समझ रहे हैं तो इतने सारे नियम इतने सारे विधियां इतने सारे चीजों का देखभाल करना तो आदमी इसमें ही इतना व्यस्त हो जाता था कि ये सब इसके पीछे ये सारी सभ्यता के पीछे उद्देश्य क्या है वो कभी कभी थोड़ा दिमाग के पीछे चल जाता था सामने में ये उद्देश्य नहीं रहता था लेकिन इस कलयुग में जब ऐसी परिस्थिति हुई है कि वर्णाश्रम धर्म प्राय नष्ट हो चुका है तो कम से कम हमें कृष्ण भक्ति तो नहीं भूलना चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है इसलिए महाप्रभु ने आके ये हरिनाम संकीर्तन का पथ बतलाया और साधन भक्ति का पथ बतलाया जिससे कि हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट रास्ता अपना के हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और केवल उन वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन कर सकते हैं जिनसे कृष्ण भक्ति करने में लाभ हो जो अनुकूल हो कृष्ण भक्ति के लिए तो देव ऋषि भूतात नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम तो जो व्यक्ति सर्वात्मना अपने पूरे मन से अपने हृदय से शरणम शरण ग्रहण करता है शरण्यम उन व्यक्ति का केवल जो शरण ग्रहण करने योग्य है और उनका नाम है मुकुंद गतः मुकुंद के पास जो जाता है अपने पूर्ण हृदय से समर्पित करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण मुकुंद के शरण ग्रहण करता है परिहृत्य कर्तम अपने वर्णाश्रम धर्म के कार्यों को त्याग कर तो ऐसा व्यक्ति न किंग करो वो और किसी का दास नहीं होता है न अयम ऋणी च राजन तो हे राजन वो किसी का ऋणी भी नहीं रहता है ये छह प्रकार के ऋणों से ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है ये कहने का तात्पर्य है तो जो भगवान कृष्ण का शरण लेता है सीधे साधन भक्ति के मार्ग के द्वारा तो वो छह प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है पूरी तरह से और उसे और किसी भी वर्णाश्रम धर्म के प्रति नियमों के प्रति कोई ऋण या जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं रहती है परंतु ये उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति या कृष्ण कथा कृष्ण नाम के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण जागृत कर चुके हैं परंतु जिन्होंने अभी तक उस शुद्ध प्रेम की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है उनके लिए आवश्यक है कि वो वर्णाश्रम धर्मों के उन नियमों को अवश्य स्वीकार करें जो उनके साधारण दैनिक जीवन में लाभदायक हों जो आवश्यक हों और इस तरह के अन्य जो विधि विधान हैं जो भक्ति से संबंधित नहीं है भले उनको न स्वीकार करें जैसे देवताओं के प्रति ऋण को चुकाने के लिए यज्ञ करना यह भी वर्णाश्रम धर्म का भाग है पितरों के प्रति बहुत सारे कार्य करना ये सब चीजें कृष्ण भक्त के लिए आवश्यक नहीं है जिसने अपना शरण ग्रहण कर लिया है श्री कृष्ण का तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही बताते हैं कि केवल हमें उन नियमों को स्वीकार करना चाहिए जो आवश्यक है बड़े श्रृंखला में बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि जीव का इस भौतिक जगत में एक एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब धीरे धीरे से प्रगति होती है आध्यात्मिक चेतना में। पहले वो पशु के समान रहता है मनुष्य होते हुए, धीरे धीरे वो शास्त्रों को मानता है, वे कर्मकांड की पद्धति में आता है, धीरे धीरे से आगे चल के धर्माचारी बन के धीरे 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 प्रगति करके अंततः अनेक जन्मों के बाद यदि वो भाग्यशाली रहे तो उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है और वो कृष्ण भक्त बन जाता है। फिर कृष्ण भक्ति स्वीकार करने पर भी और बहुत कुछ उसको आगे बढ़ना है, तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर तुरंत वो चीजों को त्याग नहीं सकता। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जब हम अगले स्तर में जाते हैं तो पिछले स्तर के नियमों को त्यागना चाहिए, परंतु हम कहां तक पहुंचे हैं अगले स्तर में, हम जब चलते हैं एक पैर उठाते हैं और दूसरा पैर तभी उठाते हैं जब पहला पैर जमीन पर लग गया, दोनों पैर उठा के चलते नहीं है, है ना। तो ऐसा कहीं ना हो कि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति भी प्राप्त नहीं किए हैं और अर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं कर रहे हैं, तो ना इधर के ना उधर के, आप समझ रहे हैं। इसलिए हमको दोनों चीजें चाहिए, उद्देश्य कृष्ण प्रेम का है परंतु शुद्ध आकर्षण कृष्ण के प्रति नहीं है, तो एक आधार चाहिए जिसमें कि रह के हम सुरक्षित रहें, स्थिर रहें, मन और शरीर स्थिर रहे, मन और शरीर की आवश्यकताएं हमारे चेतना के अनुसार संतुष्ट हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, और साथ साथ हमारी आध्यात्मिक साधना भी हम करें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब तक हम परमहंस नहीं हो जाते, हमारे शरीर और मन के आवश्यकताओं को हमें नकारना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हम खाएंगे नहीं, नहीं चलेगा, प्रकृति के नियम कार्य करेंगे। तो हम भक्ति मार्ग में भी, अंतरराष्ट्रीय हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में भी, हम वर्णाश्रम धर्म का पालन तो कर ही रहे हैं। यदि गोकुल धाम नहीं भी होता फिर भी थोड़ी हद तक आश्रमों का पालन तो कम से कम हो रहा है। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, कोई कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, तो ये विभाजन तो है ही। वैसे देखा जाए तो भक्ति का इन आश्रमों से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये चारों ही को ही भक्त होना चाहिए। भक्ति का कोई संबंध नहीं कि कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी होकर कोई शुद्ध भक्त हो सकता है, गृहस्थ होकर हो सकता है, वानप्रस्थ होकर हो सकता है, सन्यासी होकर हो सकता है। ये तो केवल एक बाह्य चीज है जो भौतिक सृष्टि से संबंधित है, तीन गुणों के अधीन एक स्तर है, उपाधि है, जिसको हम स्वीकार करते हैं। भक्ति तीन गुणों से परे है, सत्व रजस तमस से परे है, परंतु ये चार वर्ण और आश्रम, तीन विशेष करके चार वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, तीन गुणों के अधीन है। जो ब्राह्मण होते हैं सत्व गुण में होते हैं, जो वैश्य होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं रजो में होते हैं, वैश्य होते हैं रजो और तमो के मिश्रण में होते हैं, जो शूद्र होते हैं तमो गुण में होते हैं, परंतु शुद्ध भक्त तीनों गुणों के परे होते हैं। तो शुद्ध भक्त का कोई संबंध नहीं है चार वर्णों से, परंतु कृष्ण भक्ति जब हम स्वीकार करते हैं, जब तक कि हम शुद्ध भक्त नहीं रहे हैं, हमें इन वर्णों का, आश्रमों का पालन करना चाहिए। इनकी सहायता लेके हम धीरे धीरे से शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और आधुनिक काल में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी सारे समाज के लिए एक उदाहरण देने के लिए हम कोई न कोई आश्रम को स्वीकार करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। ये भी एक आश्रम है जो कि तीन गुणों में है, इससे दूर उससे परे होने के लिए संन्यास स्वीकार करते हैं लोग. वैष्णव होते हैं परमहंस, प्रभुपाद ने स्वीकार किया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वीकार किया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया प्रचार के लिए, उदाहरण देने के लिए सबके लिए. तो इसलिए हम इस वर्णाश्रम धर्म के उन नियमों को स्वीकार करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है. अभी हमारी संस्था में आश्रम तो थोड़े बहुत हैं, आश्रमों की विधि थोड़ी बहुत है, पूरी तरह से अभी तक स्थापित नहीं हुई कट्टरता से, लेकिन थोड़ा बहुत है तो सही. परंतु वर्ण अभी तक वर्णों की स्थापना हुई नहीं है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा. इतना ही प्रभुपाद चेतावनी देते हैं कि जब हम ये वर्ण और आश्रम की स्थापना करते हैं, ये केवल एक व्यवहारिक दृष्टि से है, हमारे भक्ति के प्रगति के लिए है, अनुकूल अवस्था है इसलिए है. परंतु अंततः हमें जान लेना चाहिए कि ये सब वैष्णव हैं. हमें ये नहीं कहना चाहिए ओ ये तो ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, नहीं, ये गृहस्थ वैष्णव है या ब्रह्मचारी वैष्णव है, इसलिए ये श्रेष्ठ है ये नहीं है, ऐसा नहीं. ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए हमारी. हमारी दृष्टि होनी चाहिए सब वैष्णव है, सब अपने अपने परिस्थिति के अनुसार कोई न कोई वर्ण कोई न कोई आश्रम को स्वीकार किया है, और हम सब मिलजुल कर, भले हमारा वर्ण कुछ भी हो आश्रम कुछ भी हो, हमारे एक ही उद्देश्य है और वो है श्री कृष्ण की प्राप्ति करना. ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कई बार कहा कि शत प्रतिशत वर्णाश्रम धर्म जैसे सत्ययुग आदि में किया जाता था, जो धर्मशास्त्र में हर एक नियम का वर्णन है, शत प्रतिशत करना तो असंभव है, परंतु लगभग जितना हो सके कम से कम उनके मूल सिद्धांतों को यदि लिया जाए वर्णाश्रम धर्म के, विशेष करके जो मूल सिद्धांत भक्ति के लिए अनुकूल है और समाज की स्थापना के लिए और स्थिरता के लिए एक संतुलन की अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उतना अवश्य वर्णाश्रम धर्म चाहिए हमें. और ऐसे वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना चाहते थे प्रभुपाद जी, विशेष करके गोकुल धाम जैसे प्रकल्पों के माध्यम से. ठीक है, स्पष्ट हुआ? कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?
माइंड एंड बॉडी, वी शुड सैटिस्फाई माइंड एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट कॉन्शियसनेस. सो हाउ टू नो दैट, हाउ मच शुड आई सैटिस्फाई माइंड एंड बॉडी?
प्रश्न ये है कि ऐसे बताया गया था कि मन और शरीर को संतुष्ट लगभग करना चाहिए जब तक कि हम परमहंस न हो, कि इन आवश्यकताओं को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं. तो प्रश्न यह है कि किस हद तक ये करना चाहिए. उत्तर ये है कि उस हद तक जितना हमारे भक्ति के लिए अच्छा है. यदि हम अधिक तपस्या करें जो कि हमारे लिए योग्य नहीं है, नहीं होता हमसे, फिर भी हम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर लेते हैं सीमा से बाहर, फिर क्या होगा? शरीर खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, फिर साधना ठीक से नहीं होगी, सेवा ठीक से नहीं होगी, चेतना खराब हो जाएगी, उदास हो जाएंगे, अरे क्या हुआ नहीं कर सकते हैं. तो फिर अंततः तपस्या हम कर रहे थे भक्ति में प्रगति करने के लिए, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया. तो इसलिए उतना ही खाना चाहिए, उतनी ही तपस्या करनी चाहिए जो भक्ति के लिए अच्छा है. दूसरी ओर बिल्कुल तपस्या नहीं करेंगे तो सोचेंगे नहीं नहीं हमको शरीर के लिए आवश्यक है, तो हम खूब सोएंगे खूब खाएंगे, फिर वो भी हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है. ऐसा करने से हम आलसी बन जाएंगे, हमारे मन में भोग प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, ये भी भक्ति के इच्छा को नष्ट करेगी. इसलिए भक्ति मार्ग में ये एक मध्यम पथ है, जो अति तपस्या अति करते हैं, जो बुद्धि और जो मन और शरीर की आवश्यकताओं को बिल्कुल ज्यादा नकारते हैं, वो वैराग्य और ज्ञान के का पथ है, ज्ञान योग आदि के पथ में, अष्टांग योग ज्ञान योग के जो अनुशीलन करते हैं उनके लिए वो पथ है। जो बिल्कुल कम तपस्या करते हैं, प्राय नहीं करते हैं, वो जो भोग के जीवन में रुचि रखते हैं, काम कर्मी होते हैं, उनके लिए कर्म का मार्ग है। और जो भक्त होते हैं उनका स्थान बीच का होता है, मध्यम, न अति न अल्प। इसलिए हमारे जैसे आचार्यों ने हमें बतलाया है वैसे हमें उस हद तक उतनी तपस्या करनी चाहिए, उतना हमारे मन और शरीर का ख्याल रखना चाहिए। जैसे भक्तों के बीच में अच्छा संबंध बनाए रखना, ये हमारे मानसिक स्थिरता के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी है। हम बोलेंगे मैं तो आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, संबंध के साथ क्या, ये तो दुनिया का संबंध है। फिर जब भक्तों के साथ में संबंध बिगड़ जाएगा तो क्या होता है, हमारा मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होता है तो जप नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, भक्ति में रुचि नहीं आती, धीरे धीरे से भक्ति पर परिणाम पड़ता है। इसलिए हमारे शरीर और मन का भी ख्याल रखना आवश्यक है, न ज्यादा न कम, जितना भक्ति के लिए आवश्यक है उतना रखना चाहिए। ठीक है।
तो अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध अनुकूल मतलब उसे कार्य दिया जाता है तो वो आदमी कैसे समझ सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये हीन कार्य वगैरह, ये कार्य तो मैं तमोगुण के हिसाब से मैं ये नहीं करूँगा, मुझे पठन पाठन करना है ज़्यादा
नहीं।
ऐसे
प्रश्न ये है कि यदि किसी को ऐसे कोई कार्य किया दिया जाता है जो कि शूद्र के लिए है तो उसे कैसे देखना चाहिए। हमारे भक्त समाज में ऐसे भेद नहीं किया जाता है क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इसलिए हरेक भक्त को हरेक तरह का कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म और भक्ति का संबंध बड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो पहले वर्णाश्रम धर्म हुआ करता था, हो सकता है कि जो ब्राह्मण है वो ऐसा कार्य नहीं करें, क्योंकि उनकी वास्तव में वृत्ति ऐसी होती थी और समाज में सारे वर्ण आदि की स्थापना अच्छी तरह से हो गई थी, हर एक व्यक्ति अपना अपना निर्धारित कार्य करता था, सारा सिस्टम सेट हो गया था, यहाँ ऐसे कुछ है नहीं। दूसरी बात, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार बड़े मंच पे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, दूसरी बार हम नीचे उतर के गौशाला साफ कर रहे हैं, गोबर साफ कर रहे हैं, तीसरी बार कहीं झाड़ू मार रहे हैं, फिर उसके बाद जाके कुछ पकाने लगे हैं, उसके बाद जाके कुछ पैसे का लेन देन कर रहे हैं, कुछ खरीदना है आश्रम के लिए, कोई व्यापारी के साथ जाके चर्चा कर रहे हैं क्या भाव है, कितना है, क्या है, कभी कभी कोई व्यवस्थापन देख रहे हैं कि क्या, अच्छा चलो आप ये करो, आप ये करो, अब ये करना है, चलो इधर जाके देखते हैं। कभी कोई आए तो चलो जमीन की रक्षा करने के लिए जाना है उधर, कोई हमारे पेड़ काटने के लिए आए हैं, चलो जाके देखते हैं कौन है। तो हर तरह का कार्य भक्त को करना पड़ता है, कोई ऊंचा नीचा कार्य भक्ति के लिए नहीं है। लेकिन वर्णाश्रम में इतना ही है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार सुखी रहेगा यदि वो कार्य करे तो। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। प्रश्न समस्या ये आ जाती है कि जब व्यक्ति अहंकार के दृष्टि से देखता है, मैं तो ब्राह्मण होना चाहता हूँ, लेकिन यदि उसके अंदर वो वृत्ति नहीं है तो क्या है उसमें। उसका जो शरीर और मन है एक प्रकार का बनाया हुआ है भगवान ने, दूसरे व्यक्ति का स्वभाव और उसकी वृत्ति, उसका शरीर मन दूसरे तरह से बनाया है भगवान ने। तो जैसे हमें भगवान ने बनाया है, जैसे हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हमें शरीर और मन और वृत्ति मिलती है, उस हिसाब से हमें कर्म करने हैं। जो भी हमारी वृत्ति हो, अंततः हमें कृष्ण की सेवा करके शुद्ध भक्त बनना है। तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने अपने वृत्ति के अनुसार कार्य करने के लिए संतुष्ट होना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान की दृष्टि से हर एक कार्य एक समान है, भगवान को भेद नहीं करते हैं। और इस कलयुग में वैसे भी कलो शूद्र संभव है, सब मिक्स है, सब मिश्रित है। यहाँ पर कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय कहना बहुत मुश्किल है आजकल। जो तथाकथित ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं वो भी कहीं जाके नौकरी करते हैं, वो भी डकैती करते हैं, तरह तरह के गलत काम करते हैं, तो कैसे ब्राह्मण हुए वो। तो ब्राह्मण केवल प्रतिष्ठा के लिए, एक इज्जत के लिए, एक अहंकार के लिए कि हमें वो करना है तो हमें भी करना चाहिए, नहीं ऐसा बात नहीं है कोई। इसलिए जो हमारे संस्था में दूसरी दीक्षा है वो भी एक भक्तों ने इसको गलत समझ लिया, इसको एक इज्जत का प्रतिष्ठा का विषय बना लिया कि उसको दूसरा दीक्षा मिला मुझे क्यों नहीं मिला। दूसरी दीक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं है, हरिनाम दीक्षा हमको मिल गई, हरिनाम दीक्षा हमें स्वीकार कर लिया, किसको है लेना है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन किसी को नहीं मिली फिर भी कोई बात नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति। यदि वो ठीक ठाक नाम जप करेगा, अपनी सेवा करेगा, अवश्य कर पाएगा। दूसरी दीक्षा का लाभ इतना है विशेष करके कि हम अर्चा विग्रह की सेवा मंत्रों सहित विधिवत कर सकते हैं। लेकिन हमारे शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य चीज नहीं है, हो तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है, परंतु हमें अच्छी तरह से साधन भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रतिष्ठा और इज्जत और इसका उसका बात नहीं है, और किसी को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये ऐसे काम कर रहा है तो ये इस प्रकार का वैष्णव है, वैसे कर रहा है तो उस प्रकार का, नहीं। ये नारकीय बुद्धि है, ऐसे रूपा जी कहते हैं शास्त्रों के श्लोकों को पढ़ाकर। ठीक है, हरि राम प्रभु। क्योंकि भक्ति करने के लिए सत्वगुण चाहिए, सही तरह का एक वातावरण चाहिए, कम से कम उतना तो हमको निर्माण करना चाहिए जहां तक हो सके। बाहर के शहरों में इसको करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने ऐसे स्वावलंबी खेती के समाज के लिए वर्णाश्रम से क्यों उन्होंने एक ऐसे किया कि गोकुलधाम जैसे वर्णाश्रम प्रोजेक्ट क्यों बताया जाता है इसको, क्योंकि यहाँ ये सब अपने अपने वृत्ति के अनुसार कार्य करने के लिए, एक शांत और सात्विक वातावरण में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए अनुकूल वातावरण। शहरों में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वहाँ वर्णाश्रम धर्म को करना बहुत मुश्किल है। हर एक व्यक्ति नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, तो वह ब्राह्मण कहाँ से होगा, वहाँ क्षत्रिय भी कहाँ से होगा, सब लोग सैलरी लेते हैं बाहर की दुनिया में, कोई कंपनी में काम करते हैं। बाहरी दुनिया में ये सब करना बहुत मुश्किल है शहरी जीवन में, इसलिए ऐसे वातावरण में ये बहुत अनुकूल है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए जहाँ तक हो सके, संभव हो, तो सीधे भक्ति करना उसके लिए वातावरण तो चाहिए, कृष्ण प्रेम के लिए, चेतना बनाए रखने के लिए हर चीज के लिए वातावरण चाहिए। किसी को कोई पढ़ाई में, भौतिक पढ़ाई में भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी वातावरण चाहिए। वो बैठा है, टीवी भी बज रहा है उसी कमरे में, वो कोई लोग बातचीत कर रहे हैं, कैसे वो पढ़ाई करेगा? किसी भी कार्य के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए भी ये एक अनुकूल वातावरण है। इसलिए इतना कष्ट सब ले रहे हैं आधार को, फाउंडेशन, बुनियाद को बनाने के लिए, जिसमें सभी लोग स्थिर होकर अपनी सेवा, अपने अपने मानसिक और शारीरिक वृत्ति के अनुसार सेवा करते रहे, साथ साथ साधन भक्ति के अंग को भी करते रहे और भक्ति में प्रगति करते रहे। ठीक है। आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से आप वर्णाश्रम को त्याग दोगे तो आप ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे, बल्कि पतन हो जाएगा। तो हमको पतन, भक्ति से पतन करने के बचाने के लिए ये वर्णाश्रम है। यदि आप डायरेक्ट भक्ति करना चाहोगे बिना वर्णाश्रम के सहारे तो ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। यदि कोई व्यक्ति पहले से हरिदास ठाकुर की तरह या एकदम से प्रगति कर लेता है तो फिर ठीक है, वो तो परमहंस अवस्था में पहुंच गया है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, साधारण आदमी के लिए और असाधारण व्यक्ति के लिए भी वो चाहिए कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भक्ति मार्ग में वो वर्णाश्रम धर्म के पालन करें। ये चार नियम क्या है? ये भक्ति के नियम नहीं है, ये हमको पतन से बचाने के लिए है, हमको पाप से बचाने के लिए। क्योंकि पाप हो जाएगा, पतन हो जाएगा तो भक्ति नहीं करेंगे, फिर केवल भोग करेंगे। तो वर्णाश्रम धर्म का एक पद्धति है, वो हमको पतन से बचाने के लिए, हमको भक्ति में बनाए रखने के लिए, टिकाए टिकने के लिए। फिर वर्णाश्रम धर्म का आधार है, फिर आप आगे भक्ति में बढ़ते 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 जाओगे। वर्णाश्रम धर्म का सहारा ले लोगे तो आदमी नीचे गिर जाएगा। जैसे भी ब्रह्मचारी भक्त है, गोकुल धाम ठीक है, गोकुल धाम है, गोकुल धाम शुरू होने के पहले भी ब्रह्मचारी थे ना इस्कॉन में, तभी ब्रह्मचारी है। अभी ब्रह्मचारी का एक नियम होता है कि माताओं के साथ में वो ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख सकते। वो सोचेगा बाहर की दुनिया में, चलो ब्रह्मचारी के आश्रम का नियम का पालन नहीं करेगा, ये सब आश्रम है, वर्ण है, क्या है, ये वर्णाश्रम धर्म है, हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। और यदि वो जैसे माताओं के साथ संबंध करेगा तो फिर क्या होगा, पतन हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों को स्वीकार करने से वो पाप से बचता है और भक्ति में टिका हुआ रहता है। तो अभी आश्रम की, जैसे हम कह रहे थे, आश्रम की अवस्था कम से कम थोड़ी बहुत तो है हमारी संस्था में, ज्यादा विकसित नहीं है परंतु कम से कम है थोड़ी बहुत, परंतु वर्ण प्राय नहीं है। और ऐसे गोकुलधाम जैसे प्रकल्पों में विशेष करके न केवल आश्रम लेकिन वर्णों को भी ठीक से यहाँ स्थापित किया जा सकता है। तो हर दृष्टि से आजकल जो ब्राह्मण के पुत्र है वो भी जाके किधर कोई गंदा काम कर रहे हैं, कोई क्या ऐसे काम कर रहा है जिससे उसका पतन होता है, भक्ति में नहीं रहता है। तो जैसे आश्रमों के पालन करने से भक्ति से सुरक्षा होती है, भक्ति में सुरक्षा होती है, वर्ण के माध्यम से भी सुरक्षा होती है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन हमें चाहिए हमको पतन से बचाने के लिए, हमको भक्ति में स्थिर रखने के लिए, ताकि साधन भक्ति के कार्य करते करते हम तेजी से प्रगति कर सके भक्ति मार्ग। वर्णाश्रम धर्म के सहारे के बिना प्रगति करना राजसिक और तामसिक वातावरण में बहुत मुश्किल है। ठीक है।
आपने बताया कि वर्ण का स्थापना इस्कॉन में किया गया, पहले के जमाने में तो मालूम था कि क्षत्रिय मतलब वो क्षत्रिय का पुत्र है तो वो भी क्षत्रिय का व्यक्ति रहता है, लेकिन अभी हम कैसा वर्ण को स्थापना करेंगे कि आपका गुण क्षत्रिय है, उसको कैसा थप्पा लगाएंगे हम, तो कैसा स्थापना?
नहीं, थप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आजकल लोग बहुत अहंकार की दृष्टि से और इज्जत प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। कोई व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया, कोई व्यक्ति को वैश्य कहा गया, तो मैं वैश्य तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं क्षुद्र क्यों, मैं नहीं, तो ऐसा ये लोग गलत सोचेंगे सब लोग। तो कलयुग में ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं है, और आजकल इतना मिश्रित अवस्था हो गया है सब चीज़ का कि ये भी ढूंढ निकालना कभी कभी मुश्किल होता है कि इसकी इसका वर्ण कौन सा है, मुश्किल होता है कभी कभी। कई जगह तो पता चलता है कि इसकी वृत्ति ऐसी है, ऐसे कई समाज हैं आज भी भारत में, जैसे मारवाड़ी समाज है, सिंधी समाज है, जान सकते हैं कि इसके खून में व्यवसाय है ना, तो वैश्य प्रवृत्ति पता चल सकता है, तो अच्छी बात है, वो अपने व्यवसाय करे, भगवान के लिए करे, ठीक ठाक है, पुण्यवान रहे, तो ऐसे एक वृत्ति नजर आती है, किसी के स्वभाव को देख के एक अंदाज लगाया जा सकता है, थोड़ा बहुत कभी कभी हर बार में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वृत्ति क्या है, तो इतने आसानी से वर्ण की स्थापना करना नहीं हो पाएगा, इसलिए धीरे धीरे से ये अनेक पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे से हो जाएगा। धीरे पहले क्या करना है कि सबको शांत बनाना है पहले चित्त फिर ये सब चीजें आएंगी, शांत बनाए, ऐसे एक दो चार पीढ़ियां निकल जाएंगी गोकुल धाम में, उसके बाद धीरे 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 से फिर सब एक नई पीढ़ियां उत्पन्न होंगी, फिर वो लोग सब समझ पाएंगे। और भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि गुरुकुल से ही बच्चे के वर्ण का निर्धारण होता था, जो गुरुजन माता पिता और जो वरिष्ठ थे इत्यादि, वो सब मिलजुल के परीक्षा करते थे, बच्चे का देखते, बच्चे को देखते थे कि क्या वृत्ति इसकी है, और फिर 10-12 साल की उम्र से वो पहचान लेते थे, 10-12 साल तक उसको देखते थे, 5 साल की उम्र में गुरुकुल जाता था, एक 5-7 साल उसको देख के पता चलता था, और उस हिसाब से 12-13 साल के पहले उसको उस प्रकार का प्रशिक्षण में डालते थे। गुरु देखते थे कि इसका ये है, तो उसको इस लाइन में ज्यादा प्रशिक्षण देते थे, ये इस प्रवृत्ति का है तो उसको उस लाइन में ज्यादा प्रशिक्षण देते थे, ऐसे हुआ करता था। ये सब धीरे धीरे डेवलप होगा, होना है, अभी विकसित होना है धीरे धीरे से।
महाराज ने बताया कि वृत्ति के अनुसार उनको काम लगाना चाहिए, तो जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि आपका वृत्ति ये है, तो कैसे हम उनको
वो हो जाएगा? अभी बताएंगे भी तो ऐसे उनके लिए कार्य नहीं है करने के लिए, हम इसको बताएंगे आपका वृत्ति ऐसे, ठीक है मैं करूँ क्या, क्या करना चाहिए मुझे, तो हमारे लिए वो काम नहीं है उसको देने के लिए कि उसके वृत्ति के अनुसार वो कुछ करे, क्योंकि उसको जीना चाहिए आजकल के बाहर के समान ही, उसको खाना पीना है, अपने परिवार को बनाए रखना है। जैसे आप किसी शहर में व्यक्ति को बोला आपका प्रवृत्ति ब्राह्मण का है, तो बोले क्या मैं भिक्षा मांगू जाके क्या करूँ, जैसे ब्राह्मण किया करते थे पहले, कैसे कर सकता है आजकल ब्राह्मण? आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है आधुनिक समाज में, इकोनॉमिक्स इतना बदल गया है, तो आप उसको बोलेंगे भी ठीक है आपका प्रवृत्ति ब्राह्मण है, लेकिन अपनी जीविका के लिए क्या करेगा वो शहर में रहते हुए? इसलिए ये सारी समस्याओं को धीरे धीरे से सुधारने में समय लगे, और ऐसे वातावरण में समस्याएं बहुत कम हो जाती है, सरल परिस्थिति हो जाती है, यहाँ जीने के लिए ज्यादा कुछ चीज भी नहीं चाहिए, वहाँ कोई ठीक है कोई ब्राह्मण है शहर में रहता तो उसको बड़ा घर चाहिए, रेंट देना है या खरीदना है, लोन लेना है, फिर बच्चे को और कहीं भेजना है, बड़े फीस भरने हैं, मार्केट में जाके बहुत खरीदना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में जैसे गोकुल धाम है, यदि यहाँ कोई रहे उसका जीवन बहुत सरल होगा, उसकी क्या आवश्यकताएं होंगी, ज़्यादा नहीं होगी, फिर ऐसे वातावरण में गुरुकुल भी होगा जहाँ उसके बच्चे भी जा सकते हैं, खेती है यहाँ, सब कुछ अपना स्वावलंबी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन की समस्या, जीविका के साधन की समस्या इतनी निकट नहीं होती है। इसलिए धीरे धीरे जैसे एक दो चार पीढ़ियां जाएंगी फिर ये सब धीरे धीरे हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग एक बुनियाद बना के, आधार बना के जा रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में भी काफी कुछ होना है, परिवर्तन बहुत कुछ होना है और हुआ भी है। देखिए आप सबके परिश्रम से आज इतना चमत्कार ही हो गया है। ये सब चीजें हैं, अभी हैं इमारतें हैं, ये खेती है, इतना सब हुआ है। कैसे हुआ ये सब, बहुत कुछ हुआ है अभी भी। माधव चैतन्य प्रभु
अभी के सोसाइटी में अगर ड्यूटी पर सोच उतना ही वैसे बनना चाहता है, लेकिन बाकी सब वैसा ही है तो भी वो उतना फिट हो सकता है।
बाकी हम लोग एक तरह से बनना चाहते हैं लेकिन बाहर का समाज तो दूसरे ही रास्ते में जा रहा है, तो क्या हम बदलेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हमारे लिए तो कम से कम पड़ेगा ना। भले दूसरे के ऊपर पड़े ना पड़े वो दूसरी बात, बाद में सोचेंगे, लेकिन कम से कम हर एक आदमी को पहले अपने आप को तो बचाना चाहिए। अपना फर्क, अपने लिए फर्क पड़ेगा है कि नहीं, ये निश्चित है। और दूसरी बात, जब हमारे लिए फर्क पड़ रहा है तो हमारे साथ में जो भक्त रहते हैं उनको भी फर्क पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आएंगे वो देखेंगे, अरे ऐसे लोग इतना खुश जी रहे हैं, हमको भी आना चाहिए। फिर वो आएंगे और भले वो नहीं भी आ सके तो अपनी मन में भावना बहुत अच्छी लेके जाएंगे। कल ही एक सज्जन आए थे उनको मिलने के लिए, वो एक फैक्ट्री चलाते हैं, बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़े उद्योगपति हैं बलगाम में। पहली बार आए इधर आके आश्चर्यचकाचौंध हो गए, अरे ये सब भक्तों ने किया, क्या है इतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है। वैसे भक्त नहीं है, सम्मान करते हैं भक्तों का, लेकिन नियमों का पालन जब तक नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा, अच्छा हम भी आ सकते हैं रहने के लिए गोकुलधाम में, क्या नियम है आपके, क्या करना चाहिए उधर आने के लिए। तो उत्साह मिलता है, भले वो सोचने लग जाता है आदमी कि हाँ ये जीवन कितना अच्छा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा प्रकल्प है सारे दुनिया के लिए, एक तरह का आदर्श है जिसको देख के भले लोग इस स्टैंडर्ड तक, इस स्तर तक नहीं आ पाए, लेकिन ये इनके लिए कम से कम तो प्रेरणा स्रोत तो हो जाएगा। इनमें से और कई लोग आके रह भी जाएंगे हमारे साथ, थोड़े लोग अपनी जगह में ऐसा ही दूसरा एक समाज बनाएंगे, जगह जगह लोग अपने अपने छोटे छोटे समाज ऐसे बनाएंगे। अपनी जगह में रह के कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसी जगह में रह के थोड़ा और सरल बनाएगा। तो ऐसे करके अनेक तरह तरह के लोगों को अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये प्रचार का एक ऐसा ढंग है जो आजकल जो इसको हम करते आए हैं उससे थोड़ा अलग है। बाकी जो हम साधारण तौर से प्रचार को क्या सोचते हैं, जाके पुस्तक वितरण करना, कहीं जाके स्कूल कॉलेज में, गांव में या घर में, मंदिर में प्रवचन देना, अच्छा विग्रह की सेवा कर बड़ा बड़ा मंदिर निर्माण करना, ये सब तो चलेंगे ही अवश्य, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इनको तो बंद नहीं करना है हमें। गोकुल धाम स्थापित करने के बाद भी यहाँ तो होना ही है, अर्चा विग्रह होंगे, कथाएं होंगी, ये सब होंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्रकल्प करने से, इधर बैठे रहने से भी ये प्रचार होगा। केवल सभी लोग यहाँ गोकुल धाम में रह के अपनी अपनी सेवा, अपनी अपनी साधना ठीक ठाक करेंगे तो लोग आएंगे यहाँ, हमें जाने की जरूरत नहीं। बाहर शहरों में क्या होता है, मंदिर में भी लोग आते हैं अवश्य, परंतु हमें भी जाना पड़ता है, हम जगह जगह जाके इधर जाओ उधर जाओ। लेकिन यहाँ क्या होगा, लोग हमारे पास आएंगे धीरे धीरे से, जैसे जैसे खबर फैलेगी वैसे वैसे लोग आएंगे। ये प्रचार हो गया। फिर एक आदमी जो आया वो जाके पांच लोगों को बोलेगा, अरे पता है ऐसे ऐसी जगह है, अच्छा वो लोग भी आएंगे। और ऐसा होता है ना, ये अनेक लोग आते हैं ना, कोई पर्यावरण के कई लोग आते हैं, कॉलेज से कई स्टूडेंट प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों को लेकर आते हैं, और ऐसे ही बस लोग देखने के लिए आते हैं। हमारे संस्था के भक्त कितने आकर यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ आप सबका क्या चमत्कार आप सब ने किया है देखने के लिए। इसलिए केवल यदि हम गोकुल धाम अच्छी तरह से करेंगे, इसकी स्थापित करेंगे, तो ये बहुत श्रेष्ठ प्रचार होगा अपनी जगह। फिर जब यहाँ आएंगे, सरल जीवन की ओर आकर्षित होंगे, ऊंचे विचार भी आएंगे साथ साथ। सरल जीवन के बिना ऊंचा विचार लाना मुश्किल है।
नहीं, जब तक राजा असुरी है, प्रजा अपना एक थोड़ा बदलना चाहता है।
क्या?
जब तक राजा असुरी है, प्रजा अपना एक थोड़े थोड़े भाग में थोड़ा बुरा करना चाहता है, तो वो इनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो वर्णों का अगर स्थापना करना मुश्किल हो जाता है। अगर ब्राह्मण अगर वो अपने तृप्ति के अनुसार रहना चाहता है तो नहीं रह पाएगा।
नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम राजा को तो बदल नहीं सकते, है कि नहीं? तो जो हमारे लिए संभव है हम कम से कम वो तो कर सकते हैं। आपस में हम लोग साथ में रह के एक आदर्श समाज को स्थापित कर सकते हैं, और ऐसे करने से जो लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उनको जो उत्साह मिलेगा, एक उदाहरण और आदर्श उनके लिए मिलेगा, ऐसे ये सिद्धांत, ये जीवन शैली ये फैल जाएगी सब जगह, और जैसे जैसे फैलेगी और वैसे वैसे ये चीज़ बढ़ता रहेगा। ये अनेक वर्षों की बात है, ऐसा नहीं कि 5-10 साल में समाज का परिवर्तन हो जाएगा। धीरे धीरे से ऐसे सब वातावरण फैल जाएगा, फिर और लोग उत्साहित होंगे। फिर धीरे धीरे से जब प्रजा में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि राजा को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि तब तक अच्छे अच्छे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब तैयार हो गए होंगे। तो ये थोड़े पीढ़ियों की बात है, लेकिन हमें शुरुआत करनी है। ठीक है,
सेवा चाहिए, सेवा करने के लिए, तभी हमारा मन सतोगुण में नहीं रहता, ऐसा गुस्सा ले जाता है, नहीं तो बाद में हमें पता चलता है अच्छा नहीं था, नहीं किया तो ऐसा गुण आने के लिए हमें
क्या करना चाहिए? गोकुल धाम में रहते रहना चाहिए और अपना ठीक ठाक सब करते रहना, सब हो जाएगा। बस रहो और अपने निर्धारित सेवा साधना करते रहो, भक्तों के साथ प्रेम से रहो, सब अपने समय में सब हो जाएगा। रेलगाड़ी में बैठोगे तो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए?
बैठने
गाड़ी में बैठे रहना चाहिए। गाड़ी चल रही है, हमको चलने की जरूरत नहीं है ना? वही कर
सकते
हो। यहाँ गोकुल धाम में बस रहो और अपनी सेवा करो, साधना करो, सब हो जाएगा, है कि नहीं? सही, करेक्ट। हाँ अवश्य। नहीं, जब कोई व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसका पतन हो जाएगा। ऐसे हमने उदाहरण दिया, अभी एक ब्राह्मण का लड़का था, कथित ब्राह्मण का लड़का है, वो कहीं जाके किसी फैक्ट्री में जो शराब का उत्पादन करता है उसमें बड़ा मार्केटिंग ऑफिसर बन गया। तो क्या होगा उससे? ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण रहेगा वो? उसका वर्ण के अनुसार उसको रहना चाहिए, लेकिन अभी वो इसके बहाने, प्रगति के बहाने वो इधर उधर जाके कुछ 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 कर रहा है, क्या होगा? भगवद गीता में भगवान यही बताया है ना, के कर्म में भी बताया कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार रहना चाहिए। भले थोड़े हम अपने कार्यों को इतने परिपूर्णता से न कर पाए, कोई त्रुटियां, कोई गलतियां हो, दोष हो भी हमारे अंदर, फिर भी अपने प्रवृत्ति के अनुसार काम करना ठीक है, इसके बजाय कि हम किसी दूसरे के कार्यों को परिपूर्णता से करें, क्योंकि हमारे प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने में हम फिर रह सकते हैं। ठीक है माधव प्रभु, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है, ऐसे सुंदर वातावरण आप सबको मिला है रहने के लिए और भक्ति करने के लिए। लोग इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो कल वो आए तो वो तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी कुछ है। वास्तव में यही है, लोगों के सोच के बाहर है, कल्पना के बाहर है कि ऐसे भी कुछ है। और आप सब इतने भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ सारा समय रहने के लिए अवसर मिल रहा है, जीवन यहाँ बिताने के लिए अवसर मिल रहा है। हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, इसीलिए भगवान को थोड़े समय ले आके फिर बोलते हैं चले जाओ, लेकिन आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए इसका पूरा फायदा आप उठाइए। माधव प्रभु के निर्देशन में आप अच्छी तरह से रहिए, वो इतना उनका विचार इतना स्पष्ट है इसके बारे में, निर्देशता इस पथ के बारे में, इतना उत्साह, इसलिए ऐसे भी उनके यहाँ रहने से इतनी स्थिरता आ गई है, ऐसे दिन नहीं होता था, इसलिए आप भी बहुत भाग्यशाली होते, पूरा इसका लाभ उठाइए। ठीक है ना? हरे कृष्णा,
हरे
श्री गोकुल धाम की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।